खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। उसका इत्मीनान आज के दिन में हम सब की सहायता करे, हम सब का रहनुमा हो। उसका इत्मीनान हम सबको तसल्ली और इत्मीनान की रूह में जोर बख्शे। तो आज हमने अहदनामा में से इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत उसका चार बाब उसकी हम चौथी आज हम पांचवी आयत को देखेंगे, लेकिन हम पहली छह आयत को पढ़ेंगे ताकि हमें पता हो कि पालूस रसूल क्या बात कर रहा है। पालूस कहता है, पस मैं जो खुदावन में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतनी और हिल्म के साथ तहम्बुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के मन से बंधी रहे। एक ही बदन है, एक ही रूह, चिनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से अमीर भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है, और सबके ऊपर जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का बंदा पालूस रसूल उन रोमी लोगों को, उन यूनानी लोगों को जिनके रवाज में, जिनके अकीदे में बहुत से खुदा थे, बहुत से देवी देवता थे, बहुत से उन्होंने खुदा के रूप बनाए हुए थे, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे साथ देखे रोमियों के नाम पालूस का खत उसका पहला बाब। पहले ही बाब में वो उन लोगों की हालत बयान करता है जिन्होंने खुदा को जाने बगैर, खुदा की समझ रखे बगैर, खुदावन खुदा को हकीकी जाने बगैर क्या किया, गुमराही की बातों में मुब्तला हुए। और वो कहता है रोमियों के नाम पालूस रसूल का खत पहला बाब उसकी 18वीं आयत से, ये उन लोगों की हालत है जिन्होंने खुदावन खुदा को नहीं जाना, जिसके बारे में पालूस कहता है एक ही खुदावंद है, एक ही रूह है, एक ही बदन है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है, और उनको बयान करता है क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता था, हो सकता है, वो उनके बातन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनी हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती है, यहां तक कि उनको कुछ उज्र बाकी नहीं। इन पहली 18वीं, 19वीं और 20वीं आयत में पालूस रसूल सादा तौर पर कहता है कि खुदा का गजब उन लोगों पर जाहिर हुआ जिन्होंने खुदा की सूरत, खुदा की जात, खुदा की बनाई हुई हर एक चीज को देखते हुए खुदा ने उनके बातनों में, उनके अंदर, उनके दिलों में, उनके जमीर में भी इस बात को उजागर किया था कि कोई खुदा है जिसने आसमान को बनाया, कोई खुदा है जिसने करोड़ों अरबों सितारों को उस नीली छत पर टपका दिया जिसे आसमान कहते हैं, लगा दिया, चमका दिया, कोई है जिसने सूरज बनाया, कोई है जिसने चांद सितारे बनाए, कोई है जिसने इंसान को पैदा किया। सो उन आदमियों पर खुदा का गजब नाजिल हुआ जिन्होंने बेदीनी से खुदा का इनकार किया, और लिखा है कि खुदा की जात की तमाम सिफतें, खास बातें सब पर जाहिर थी। इस दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जैसे बहुत दफा लोग कहते हैं कि उन लोगों का क्या होगा जहां तक खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मेरा कलाम नहीं पहुंचता मैं नहीं आऊंगा। उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने कभी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना। याद रखें, इस दुनिया में कोई भी ऐसा कोना नहीं जहां से चांद नजर ना आता हो, कोई भी ऐसा कोना नहीं जहां पर सूरज की रोशनी ना पहुंचती हो, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पर इंसान रहते हो और उनको खुदा के बारे में इल्म ना हो। हर एक का इल्म तो है कि खुदा है, लेकिन उन्होंने खुदा को जानने की बजाय अपना ही कोई खुदा बना लिया, जिसके बारे में पालूस कहता है 21वीं आयत में, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातल ख्यालों में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ बन गए और गैर पानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चुपाओं और कीड़ों मकौड़ों की सूरत में बदल डाला। इस दुनिया में बहुत से ऐसे कबीले हैं जो सच्चे खुदा से वाकिफ नहीं रहे, लेकिन उन्होंने किसी ना किसी चीज को अपना खुदा बनाया हुआ है, किसी इंसान की सूरत पर, जानवर की सूरत पर, कीड़े मकौड़ों की सूरत पर, और उन्होंने अपने आप को दना जानकर कहा कि यही मेरा खुदा है। जैसे हम हिंदू अकीदा में देखते हैं कि 36 लाख से ज्यादा देवी देवताओं को वो मानते हैं, और उन सब का कोई जानवर है, कोई बांदर है, कोई और, कोई और, कोई और, हम सब इससे वाकिफ हैं, ड्रामों में हम सब देखते उनको पता है कि खुदा है, लेकिन वो सीधा खुदा के पास जाने के बजाय कहते हैं कि ये तमाम वसीले हैं जिनसे वो खुदा तक, जिसे वो भगवान कहते हैं, जिसे वो परमेश्वर कहते हैं। इसीलिए खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, इफिसस की कलीसिया को लिखते हुए उन लोगों को जो रूमी थे, जो यूनानी थे, जिनमें देवी देवताओं को मानने का तसव्वुर पाया जाता था, और मैंने आपको जैसे बताया था कि इफिसस शहर में एक बहुत ही बड़ा मंदिर था, खूबसूरत मंदिर था, मशहूर मंदिर था, दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा इफिसस शहर में पाया जाता था, और उस अजूबे को क्या कहते थे, इर्तमस देवी का मंदिर। ये देवी सोने का उसका मुजस्मा बनाया हुआ था, इसे हुसन की देवी भी कहा जाता था, और रूमी और यूनानी लोग, उनमें भी बहुत से हजारों हजार खुदावंद और खुदा पाए जाते थे, देवी देवताओं को मानते थे, बुतों को पूजते थे, और इसीलिए पालूस रसूल कहता है उस दौर के लोगों को और आज हम सब के लिए कि एक ही बदन है, और वो बदन क्या है, खुदावन खुदा की कलीसिया, एक ही रूह है, यानी कि खुदा का पाक रूह जो हमारा मददगार है, क्योंकि बहुत सी रूहें हैं, जैसे कह सकते हैं कि बदी की रूह, झूठ की रूह, फरेब की रूह, शैतान की रूह, गुमराही की रूह, और फिर बदकारी की रूह। इस दुनिया में बेशुमार रूहें पाई जाती हैं, और वो तमाम रूहें जो बदकारी की हैं, बेईमानी की हैं, वो किसकी तरफ से हैं, अबलीस की तरफ से। तो पालूस उनको कहता है कि एक ही रूह है, और वो किस तरफ इशारा करता है, खुदा पाक रूह की तरफ, और फिर कहता है 5वीं आयत में, चौथी आयत के आखिरी हिस्सा में, एक ही उम्मीद है, हमारी उम्मीद भी एक ही है। दुनिया के बहुत से अकीदों में पाया जाता है कि अगर इंसान आज मर जाएगा तो कल कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या होगा, ये एक दुनिया में अकीदा पाया जाता है। एक और अकीदा दुनिया में पाया जाता है कि इस दुनिया में खाओ पियो, मस्ती करो, नशाबाजी करो, सब कुछ करो, क्योंकि जो कुछ तुम यहां पर कर लोगे यही तुम्हारी दोजख और यही तुम्हारी जन्नत है। और एक और कीदा पाया जाता है जो हिंदुओं में है, कि तुम अगर इस जन्म में अच्छा कुछ नहीं कर सके, अगले जन्म में तुम्हें फिर कुछ मौका मिलेगा। वो 7 दफा पैदा होने पर यकीन रखते हैं। लेकिन पालूस यहां पर कहता है कि हमारे बुलाए जाने से एक ही उम्मीद है, और वो उम्मीद क्या है कि इंसान एक दफा पैदा होता है और उसके लिए मरना जरूर है। बाइबल मुकद्दस में कहीं नहीं बताया गया कि 7 दफा बंदा पैदा होगा। बाइबल मुकद्दस में बताया गया है कि जो मौत जो औरत से पैदा हुआ है उसे मरना जरूर है। अय्यूब नबी ने यह कहा, मूसा ने कहा, खुदा ने आदम से कहा कि तू खाक है और फिर खाक में मिल जाएगा। सुलेमान बादशाह ने कहा कि जब बंदा मर जाता है तो जिस्म खाक के हवाले किया जाता है और रूह खुदाए अब्दी के पास चले जाती है। बाइबल मुकद्दस नहीं बताती कि 7 मौतें हैं या 7 जन्म हैं। बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि जो लोग कहते हैं कि इसी जिंदगी में सब कुछ है और इसके बाद कुछ नहीं, वो झूठे हैं। अगर यहां पर ही खाना पीना है और कोई हिसाब नहीं, तो फिर बाइबल मुकद्दस उन लोगों के साथ मुत्तफिक नहीं। खुदा का कलाम उनको गलत ठहराता है। इसलिए हमारी उम्मीद क्या है? दुनिया के लोग कहते हैं कि मर जाएंगे, कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि जी यहाँ पर ही सब कुछ हो जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि यीशु मसीह जिस तरह आसमान पर उठाया गया वैसे ही वापस आएगा, और जो उस पर ईमान रखते हैं वो आसमान पर हमेशा की जिंदगी गुजारेंगे, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब में, मैं जाता हूँ कहाँ पर? आसमान पर, अपने बाप के पास, और फिर वापस आऊंगा ताकि तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। और फिर जो बात 5वीं आयत में है, एक ही खुदावंद। इस दुनिया में जब लफ्ज खुदावंद का देखते हैं तो रूमी लोग अपने शहंशाह के लिए, बादशाह के लिए या फाराउन के लिए जो हाकम होता था उसके लिए लफ्ज खुदावंद का इस्तेमाल करते थे, हाकम का इस्तेमाल करते थे, मोहतबर या आला दर्जे की शख्सियत के लिए। सो पालूस रसूल रोमियो को, उन यूनानियों को, उन गैर कौमों को जो एक दफा में बहुत से शहंशाहों के आगे जाकर झुकते थे और कहते थे, सजदा करते थे, उन सब को बताते हुए कहता है एक ही खुदावंद है। और जब वो खुदावंद का लफ्ज पालूस रसूल इस्तेमाल करता है तो वो पुराने अहदनामे की उस बात को याद रखता है कि जमीन पर बथेरे खुदावंद और बथेरे खुदा है, लेकिन हमारे नजदीक एक ही खुदा है। मेरे साथ एक हवाला देखें कि क्यों पालूस रसूल ने करंथस की कलीसिया को भी यही बात लिखी थी। पहला करंथियों उसका 8 बाब उसकी हम 1वीं आयत से 6वीं आयत तक पढ़ेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि पालूस रसूल ने क्यों कहा कि एक ही खुदावंद है जिसका नाम यीशु मसीह है। एक ही खुदावंद है जो वाहद है, जो सजदे के लायक है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था लफ्ज उर्दू में कि कोई दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। इंग्लिश में कहा गया है खुदावंद कि कोई दो खुदावंदों को मान नहीं सकता, या तो एक से जुड़ा रहेगा और दूसरे की मुखालफत करेगा। पहला करंथियों 8 बाब उसकी 1वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। करंथस की कलीसिया में भी बहुत से बुत पाए जाते थे। करंथस के जो लोग थे ये ऐसा इलाका था जिसमें बेहयाई, बुत प्रस्ती, जादूगरी और नंगा नाच और बहुत बड़ा क्या कहते थे ये दारो खिलाफा था, जहां पर तस्करी यानी के लेने देने का काम होता था। दूसरे मुल्कों से बड़े बड़े बेड़े जहाज आते थे और खाने पीने की चीजों का क्या किया जाता था, लेन देन। तो वहां पर पालूस ने जब खिदमत की, यीशु मसीह का कलाम सुनाया, लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया, तो उनकी सोच को साफ करते हुए उसने कहा अब बुतों की कुर्बानी की बाबत ये है, हम जानते हैं कि हम सब इलम रखते हैं। इलम गरूर पैदा करता है, लेकिन मोहब्बत तरक्की का बायस है। अगर कोई गुमान करे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। ईमानदारों को कहता है कि गरूर ना करो कि तुम कुछ जानते हो, लेकिन मैं तुमको बताना चाहता हूं कि सच क्या है। लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है उसको खुदा पहचानता है, जैसे लिखा है कि खुदा दिलों और गुर्दों का जानने वाला है, जिसके बारे में दाऊद ने कहा कि वो मेरा बैठना उठना बखूब जानता है, वो मेरे ख्यालों को दूर ही से समझ लेता है। और चौथी आयत, पस बुतों की कुर्बानी के गोश्त खाने की निस्बत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज नहीं, बुत कोई चीज नहीं, वो हाथ के बनाए हुए इंसान की कारागरी है, और सवाय एक के और कोई खुदा नहीं, सवाय एक के कोई और खुदा नहीं, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जिसने हमको जीती जान किया, जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, जिसने अपना कलाम हम सबको दिया। और पांचवी आयत, अगरचे आसमान व जमीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, पालूस कहता है अगरचे आसमान और जमीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनाचे बथेरे खुदा और बथेरे खुदावंद हैं, देवी देवता बद्रूहे, शैतान अपने आप को क्या कहता है, मैं खुदा ताला की मानत बनूंगा, शैतान अपने आप को क्या कहता है, मैं दुनिया का हाकम हूं, शैतान अपने आप को क्या कहता है, मैं यीशु मसीह हूं। तो पालूस कहता है इस धोखे में ना रहो, एक ही खुदावंद है, इसलिए वो कहता है बथेरे खुदा और खुदावंद हैं। लेकिन छठी आयत में वो कहता है ईमानदारों के नजदीक जो सच है, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है यानी बाप, जिसे यहोवा खुदा कहा गया है, जिसे इसराइल की अमीर, जिसे इब्राहिम इसहाक यकूब का खुदा कहा गया है, यानी एक ही खुदा जिसे बाप, जिसकी तरफ से सब चीजें हैं और हम उसी के हैं और एक ही खुदावंद है, और वो खुदावंद कौन है, यीशु मसीह, जिसने मौत पर फतह पाई, जिसने गुनाहों का कफारा दिया, जिसने कहा कि मैं हूं, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, एक ही खुदावंद है यानी यीशु मसीह। पालूस रसूल ने नाम जरूरी लिखना चाहा कि उनको भी पता चल जाए कि एक खुदावंद है वो रोमी नहीं, एक खुदावंद है वो रोमियों का शहंशाह नहीं, एक खुदावंद है वो यूनानियों का खुदा नहीं, एक खुदावंद है वो कोई और देवी देवता या बदू नहीं, उसका नाम यीशु मसीह है। और उसने वाजह तौर पर लिखा है, यानी यीशु मसीह, जिसके वसीला से सब चीजें मौजूद हुई। यूहन्ना की इंजील पहले बाप ने क्या लिखा था, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम खुदा था और खुदा कलाम था, और सब चीजें किसके वसीला से पैदा हुई, उसके वसीला से, और उसका लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, यीशु मसीह के लिए। इसलिए वो कहता है सब चीजें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीला से हैं, वो कहता है तुम भी यीशु मसीह के वसीला से हो। इसलिए वो जब लफ्ज रूमी दौर में, जब वो करंथियों की कलीसिया में, जब वो इस शहर में जो सात अजूबों में से एक अजूबे का ऐसा जगह थी जहां पर बहुत बड़ा मंदिर और देवी देवता पाए जाते थे, वहां पर कहता है एक ही खुदावंद है। आज जिस माहौल में हम हैं, बहुत से अपने आप को खुदावंद और खुदा कहते हैं, खुदा की तरफ से भेजे हुए कहते हैं, याद रखें कि यीशु मसीह के सिवा कोई और नहीं। बाकी जितने सब पैदा हुए गुनाह में पैदा हुए, वाहद यीशु मसीह है जो पाक हस्ती है, जिसमें गुनाह नहीं पाया जाता, इसीलिए उसे खुदावंद कहा जाता है। इसलिए हमें ना कि किसी दुनियावी शहंशाह के आगे अपने सर को झुकाना है, बल्कि उस वाहद हस्ती के लिए जो आसमानी है और जो जमीन का बादशाह है, और उसका नाम यीशु मसीह है। कोई और खुदा नहीं, रूमी नहीं, यूनानी नहीं, हिंदुओं का नहीं, किसी और कबीले का नहीं, सिर्फ यीशु मसीह जो हमारी उम्मीद है। सो उसको याद रखें, कभी भी गुमराह ना हो, कभी भी किसी को अपने आप को गुमराह करने ना दें कि कोई कहे कि जी मैं आपको एक नए खुदा के बारे में बताता हूँ। जैसे हमारे बहुत से दफा लोग कहते हैं कि जी यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे, इसलिए एक बंदा और है जिसने 50 रोजे रखे और वो यीशु से ज्यादा इज्जत वाला बन गया, उसका गीत गाने की जरूरत नहीं। मैं बात कर रहा हूं जैसे कि बहुत दफा जो बरबर की कलीसिया है जो कहती है कि हमें टियर पॉल की इबादत करने की जरूरत है, उसके गीत गाने की जरूरत है, वो बिदत है, गलत तालीम है। सिर्फ यीशु है जिसकी प्रस्तुति करने की जरूरत है, ना किसी पादरी की, ना किसी रसूली कलीसिया के टियर पॉल की, ना ही किसी और खुदा के खादम की। ऐसा होता तो मूसा ने कहा था कि मैं भी तुम्हारी तरह हूं। यूहन्ना जब आसमान पर उठाया गया तो उसने फरिश्ते को सजदा किया तो फरिश्ते ने कहा कि मुझे नहीं, एक ही है जो खुदा का बड़ा है जिसका नाम यीशु मसीह है, उसकी इबादत किसी और की नहीं, ना पादरी फैसल की, ना किसी और की के उसने 50 या 60 रोजे रखे हैं, सिर्फ वाह एक हस्ती यीशु मसीह आए खुदा के जुड़ चुके हैं।